अध्याय 10, मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य, द एलाइड ऑक्यूपेशन। पृष्ठ संख्या 140। द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस से पराजित और बम से तहस नहस जापान काफी अशक्त हो गया था। साम्राज्य समाप्त हो गया था और जापान की विदेशी परिसंपत्तियां जब्त कर ली गई थी। 1945 से 1952 तक सहयोगी देशों का जो कब्जा रहा वह जापान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र शक्तियों के सैनिक एवं राजनीतिक नियंत्रण का कार्यकाल था। 1945 से अगले 6 वर्ष और 8 माह के लिए संबद्ध नीति जापान की राजव्यवस्था, अर्थतंत्र एवं समाज द्वारा भविष्य में रुख अपनाने की दिशा का खुलासा करने की थी। 14 अगस्त 1945 को जापान द्वारा पॉट्सडैम घोषणा द्वारा निर्धारित समर्पण की शर्तों को स्वीकार करने से जो औपचारिक आधिपत्य हुआ था वह 28 अप्रैल 1952 को सैन फ्रांसिस्को शांति संधि लागू होने से समाप्त हो गया, जब जापान को संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो गया था। आधिपत्य अधिकारियों द्वारा जापान में विसैनिकरण एवं लोकतंत्रीकरण के दो मूलभूत उद्देश्यों को जापान में बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में विकास एवं परिवर्तन दोनों की शर्तों पर, जो कभी कभी मित्र राष्ट्र शक्तियों के सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर ऑफ द एलाइड पावर्स अथवा संक्षेप में स्कैप के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर थे, निर्धारित किया गया था। जापान के संबद्ध आधिपत्य के 4 मुख्य चरणों का पता लगाया जा सकता है, जबकि कड़े अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए चारों चरणों को बताना यथार्थ नहीं है और निस्संदेह दोनों प्रयोजन परस्पर व्यापी है। फिर भी केंद्रीय प्रवृत्तियों एवं एस्केप के संचालन के तौर तरीकों एवं लक्ष्यों में परिवर्तन के अध्ययन के लिए संपूर्ण रूप से वैध एवं उपयोगी नजर आते हैं। ये 4 मुख्य चरण थे। पहला, 1945 तक का काल, जिसमें विभिन्न अमेरिकियों तथा जापानियों द्वारा एक सहयोगी मैत्री स्थापित करने के लिए कई दांवपेच लगाए गए। 1945 से 1947 तक का काल, जब अमेरिका के भारी दबाव में विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुधार किए गए। 1947 से 1950 तक का काल, जब यद्यपि अमेरिकी राजनीतिज्ञ कुछ क्षेत्रों में सुधारों पर जोर दे रहे थे, तथापि उन्होंने अपना मुख्य ध्यान जापान के आर्थिक पुनर्वास की ओर लगाया। चौथा, 1950 से 52 तक का काल, जब जापानी सुरक्षा की भविष्य की आवश्यकताओं की ओर पूरा ध्यान दिया गया। मित्र राष्ट्रों की जापान के प्रतिनिधि 1943 के कासा ब्लांक सम्मेलन तथा 1945 के याल्टा सम्मेलन से 26 जुलाई 1945 कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन एवं चीन की सरकारों द्वारा पॉट्सडैम घोषणा तक धीमी गति से विकसित हुई। इस दस्तावेज में उन हठी सैन्यवादी सलाहकारों के तुरंत आत्मसमर्पण के लिए, इमेडिएट सरेंडर ऑफ दोज सेल्फ विल्ड मिलिट्रिस्टिक एडवाइजर्स कहा गया, जिनकी नासमझ नीतियों ने जापानी साम्राज्य को सर्वनाश की मुंह में झोंक दिया था। इस दस्तावेज में युद्ध अपराधियों के लिए कड़ी सजा के साथ साथ जापान के सभी उपनिवेशों को छीने जाने तथा जापान की भूमि पर कई स्थानों पर मित्र राष्ट्रों द्वारा कब्जा किए जाने की भी मांग की गई। पोट्सडैम घोषणा में न केवल जापान द्वारा हथियार डालने के लिए अमेरिकी शर्तों को सामने रखा गया, बल्कि उसमें यह विशेष तौर पर वादा भी किया गया कि अमेरिका न तो जापानियों को गुलाम बनाना चाहता था और न ही जापान को एक राष्ट्र के रूप में नष्ट करना चाहता था। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि जापान को ऐसे उद्योग बनाए रखने दिया जाए जो उसकी अर्थव्यवस्था को जीवित रखेंगे। जापान विल बी परमिटेड टू मेंटेन सच इंडस्ट्रीज एज विल सस्टेन हर इकॉनमी। यह भी आश्वासन दिया गया कि मित्र राष्ट्रों की आधिपत्य सेनाओं को जापान से तभी हटा लिया जाएगा जैसे ही जापानी जनता की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार एक शांति प्रिय एवं जिम्मेदार सरकार स्थापित करके इन उद्देश्यों की स्थापना हो जाएगी। अब कई जापानी नेता भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं जापानी सेना की प्रशांत में करारी हार, बमों के गिरने से भारी जान और माल की क्षति, जापानी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तथा 1945 तक की हुई लगभग भुखमरी की दशा के कारण सामाजिक असंतोष न फैल जाए, इससे राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को गंभीर खतरा हो सकता था। इन नेताओं ने सफलतापूर्वक 22 जुलाई 1944 तक प्रधानमंत्री तोजो हिदेकी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। अब पहले कोइसो कुनिआकी और फिर 7 अप्रैल 1945 से एडमिरल सुजुकी कंतारो ने प्रधानमंत्री पद को संभाला। लेकिन इन दोनों में भी आत्मसमर्पण के लिए हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जापान ने पोट्सडैम घोषणा का कोई जवाब नहीं दिया था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर अणुबम फेंके। 10 अगस्त को सुजुकी ने अपने विभाजित मंत्रिमंडल को सम्राट के सम्मुख पेश किया, जिन्होंने स्वयं वक्तव्य में जापान को आत्मसमर्पण करने को कहा, बशर्ते सम्राट के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। 14 अगस्त को सेना के चल रहे विरोध पर काबू पाने के लिए दूसरा शाही सम्मेलन बुलाया गया और युद्ध का अंत हो गया। अनेकों दस्तावेजों के द्वारा विभिन्न रूपों एवं व्यवस्थाओं में आधिपत्य के लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त सेनाध्यक्षों ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ्स का निर्देश नंबर 1380/15, जो विशेषकर एस्केप के मार्ग निर्देशन के लिए जारी किया गया था, कब्जे के उद्देश्यों का सबसे अधिक विश्वसनीय स्रोत था। इस निर्देश का पैरा नंबर 3A इन उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त करता है। जापान के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जिनके अंतर्गत संभवतः अधिकतम आश्वासन दिया जा सके कि फिर से जापान राष्ट्र समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा न बने। इन कदमों में बाकी के अलावा शामिल हैं काहिरा घोषणा का पालन तथा जापानी प्रभुत्व को उसके 4 मुख्य द्वीपों तथा मित्र राष्ट्रों द्वारा निश्चित किए गए छोटे द्वीपों तक सीमित करना, सैन्यवाद एवं उग्र राष्ट्रवाद की उनके सब रूपों में समाप्ति, जापान का निशस्त्रीकरण एवं विसैनिकरण, सरकारी आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाओं में प्रजातांत्रिक प्रवृत्तियों एवं विधियों को सशक्त करना और उदार राजनैतिक प्रवृत्तियों को जापान से प्रोत्साहित करना एवं उनका समर्थन करना। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विथ रेस्पेक्ट ऑफ जापान इज टू फोस्टर कंडीशंस विच विल गिव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एश्योरेंस डेट जापान विल नॉट अगेन बिकम ए मीनेंस टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली ऑफ नेशंस। दीज मेजर्स इंक्लूड एमोंग अदर्स द कैरिंग आउट ऑफ द कायरो डिक्लेरेशन एंड द लिमिटिंग ऑफ जापानीज सोवरेनिटी टू द 4 मेन आइलैंड्स एंड सच माइनर आइलैंड्स एज द एलाइड पावर्स डिटरमाइन, द एबोलिशन ऑफ मिलिटेरिज्म एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म इन ऑल दियर फॉर्म्स, द डिसआर्ममेंट एंड डीमिलिटराइजेशन ऑफ जापान, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज एंड प्रोसेस, गवर्नमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट ऑफ लिबरल पोलिटिकल टेंडेंसीज इन जापान। मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण की शर्तों की औपचारिक परिभाषा 27 दिसंबर 1945 की संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड एवं सोवियत संघ की संयुक्त मास्को घोषणा में दी गई। इस समझौते के अंतर्गत सुदूर पूर्व अभियोग, जिसमें 11 सहयोगी देशों के सदस्य थे, की स्थापना का प्रबंध किया गया। इन सदस्यों का समय समय पर मूलभूत नीति से संबंधित मुद्दों पर मार्ग निर्देशन करने के लिए वाशिंगटन में मिलने का प्रावधान किया गया। इस समझौते के अनुसार जापान के लिए मित्र राष्ट्र परिषद की स्थापना की गई, जिसका कार्य टोक्यो में मिलकर समय समय पर आत्मसमर्पण की शर्तों की निगरानी करना था। इन समुदायों की शक्ति काफी सीमित थी, क्योंकि यह समुदाय सहयोगी शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए सलाहकार संस्थाओं के रूप में कायम किए गए थे और सहमति न होने पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नीतियां एवं शक्ति ही चलती थी। ऐसी दशा में मित्र राष्ट्रों की आधिपत्य में भागीदारी केवल औपचारिक रूप में ही कारगर रूप में नहीं। जर्मनी की तुलना में जापान को ना तो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित ही किया गया था और न ही वहाँ पर कोई बराबर के हिस्सेदार थे। अमेरिकी सरकार की देखरेख में भी केवल नाम मात्र का ही आधिपत्य था। यह सही मायनों में जनरल मैक आर्थर के हाथों में था, जो एस्केप का प्रथम कमांडर था और जिसे आधिपत्य अधिदेश में अधिकार दिया गया था कि यूरोपीय एवं जापानी सरकारों के राज्य का कार्यभार देखने का अधिकार मित्र राष्ट्र सेनाओं का सर्वोत्तम कमांडर होने के नाते आपके अधीन है। द अथॉरिटी ऑफ द यूरोपियन एंड जापानीज गवर्नमेंट्स टू रूल द स्टेट इज सबऑर्डिनेट टू यू एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द एलाइड फोर्सेज। उसकी सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य का कार्यभार संभालना था। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जापानी सरकार की कार्यप्रणाली एवं संस्थाओं को कार्यरत रखा जाना था। एस्केप अपने अधिकारों का प्रयोग जापानी सरकार के जरिए करता था, जैसा कि 29 अगस्त 1945 के ज्ञापन में कहा गया था कि नीति जापान में प्रचलित सरकारी ढांचे का प्रयोग करने के लिए है, न कि उसके समर्थन के लिए। द पॉलिसी इज टू यूज द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन जापान, नॉट टू सपोर्ट इट। जनरल मैकआर्थर ने अलग से सैनिक सरकार की अधिकारी शाखा मिलिट्री गवर्नमेंट स्टाफ सेक्शन अथवा G5 की स्थापना न करने का फैसला किया। इसकी बजाय उन्होंने कई विशेष शाखाएं कायम की, जिन्हें उन्होंने अपने टोक्यो के मुख्यालय के ढांचे में शामिल कर लिया। लगभग 5,500 अधिकारियों को, जिन्हें अलग अलग गुटों में बांटा गया था, मिलाकर एस्केप सरकार बनाई गई थी। अक्टूबर 1945 तक 9 विशेष शाखाएं स्थापित की जा चुकी थी, जिनकी संख्या बाद में 13 हो गई। इन शाखाओं में दो तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जनरल कोर्टनी हिटनी की सरकारी शाखा जो राजनीतिक सुधारों पर जोर देती थी, तथा जनरल विलियम मार्कुएट की आर्थिक एवं वैज्ञानिक शाखा जिसका मुख्य कार्य आर्थिक सुधार था। रूढ़िवादी असैनिक जापानियों के लगभग संगठित गुट के साथ इन विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों ने मिलकर कार्य किया, तथा कब्जे के आरंभिक चरणों में आधारभूत आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक सुधारों की भूमिका तैयार की। जैसा कि पोट्सडैम घोषणा में वादा किया गया था, आधिपत्य शासन ने तुरंत जापान की युद्ध मशीन को खदेड़ने के लिए कदम उठाए। लगभग 60 लाख सैनिकों एवं असैनिकों को जबरदस्ती जापान के उन विदेशी उपनिवेशों तथा अन्य क्षेत्रों से वापस भेजा गया, जिन्हें उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हथियाया था। कुछ हद तक यह एक मानवीय कार्य था, क्योंकि इसके द्वारा जापानी सैनिक वापस अपने परिवारों में लौट पाए, लेकिन इससे एक उद्देश्य भी पूरा किया गया, जो जापान के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व को उसके पुराने साम्राज्य से समाप्त करना था। जिन जापानियों को जबरदस्ती वापस जापान लौटाया गया था, वे अपने सारे संपत्ति खो चुके थे और एक निर्धन तथा दुखमय जीवन व्यतीत करने के कारण उनसे जापान की लगभग मरणासन अर्थव्यवस्था के लिए और भी समस्याएं पैदा हो गई। पोट्सडैम घोषणा में जापान का विसैनीकरण केवल एक औपचारिक ढंग से नहीं, बल्कि उसे एक विस्तृत विषय के रूप में लिखा गया, जिसमें जापानी नेतृत्व का संपूर्ण शुद्धिकरण किया गया। घोषणा के पैरा 6 में साफ कहा गया था कि हमेशा के लिए उस अधिकार एवं प्रभाव को समाप्त कर देना है जिसने जापानी प्रजा को धोखा दिया और गुमराह करके उन्हें विश्व विजय के पथ पर झोंक दिया। देयर मस्ट बी eliminated for all times the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest। इस कार्यक्रम का मुख्य भाग युद्ध अपराधों के अभियोग एवं राजा से संबंधित था। सहयोगी राष्ट्र अधिकारियों ने लगभग 6,000 द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अपराधियों पर सैनिक न्यायालयों में 3 मई 1946 और 12 नवंबर 1948 के बीच निर्दयी व्यवहार के लिए मुकदमा चलाया। 28 प्रथम श्रेणी की युद्ध अपराधियों, जिनमें तोजो मुख्य थे, पर युद्ध नियमों के उल्लंघन, मानवता एवं शांति विरोधी अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। इनमें से कईयों को न केवल मृत्युदंड दिया गया, बल्कि उन्हें यह दंड जानबूझकर सम्राट के पुत्र अकिहितो के जन्म दिन 23 दिसंबर को दिया गया। प्रथम श्रेणी के अपराधियों के अभियोगों ने जापानी प्रजा के मन में विजेता के इंसाफ, विक्टर्स जस्टिस की उपपन्नता के बारे में आशंकाएं पैदा कर दी।